From the conference center at Temple
Square, सॉल्ट लेक सिटी में टेम्पल स्क्वायर स्थित सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 187वां अर्थवार्षिक महासम्मेलन का शनिवार समय कालीन सत्र है। वक्ता गिरजे के जनरल अधिकारियों और पदाधिकारियों में से चुने गए हैं। इस सत्र का संगीत बॉन्डीवेल और सैंडी यूटा क्षेत्र के युवा गायक मंडली द्वारा होगा। यहाँ प्रसारण बॉनिवेल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है। गिरजे के प्रथम अध्यक्षता में द्वितीय सलाहकार अध्यक्ष डीटर एफ उकडोर्फ इस सत्र का संचालन करेंगे।
Dear brothers and sisters, dear friends.
भाइयों और बहनों, हम अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के 187 अर्धवार्षिक महासम्मेलन के शनिवार सायंकालीन सत्र में आपका स्वागत करते हैं। हम अध्यक्ष थॉमस मॉन्सन को हमारा प्रेम भेजते हैं, जो इस महासम्मेलन की कार्रवाइयों को अपने घर से देख रहे हैं। हम उन सभी को हमारी शुभकामनाएं देते हैं जो यहाँ उपस्थित हैं या टेलीविजन, रेडियो या इंटरनेट के माध्यम से इसमें भाग ले रहे हैं। हम इसी प्रकार उनका स्वागत करते हैं इन सभाओं के को विश्व के विभिन्न भागों में स्टेक केंद्रों में देख रहे हैं, जहाँ सम्मेलन की कार्रवाई उपग्रह प्रसारण द्वारा दिखाई जा रही है। इस तरह का संगीत मेंडल यूटा स्टेको की युवा गायक मंडली द्वारा लेई टेरेट के निर्देशन में होगा। लिंडा मार्गेट्स ऑर्गन बज जाएंगी। गायक मंडली कम ये चिल्ड्रन ऑफ द लॉर्ड गाकर इस सभा का आरंभ करेगी। इसके पश्चात आरंभिक प्रार्थना 70 के एल्डर लॉरेंस सी कॉर्बिज 70 के द्वारा की दी जाएगी।
Children of the Lord, let us sing with one another. Our dear Heavenly Father,
हमारे प्रिय स्वर्ग के पिता, हम बहुत ही आभारी हैं, आशीषित महसूस करते हैं और इस समय में हम रहते हैं जब मिलकर हम परिपूर्ण समय में इस मार्क सम्मेलन में देख बैठे हुए हैं। हमारे पास सुसमाचार की पूर्णता है, हमारे पास सुसमाचार के संदेश हैं, जीवित भविष्यवक्ता हैं और आपकी पवित्र आत्मा की वो आत्मा है। हम विशेष कर धन्यवाद से रहते हैं, हम आपके पुत्र यीशु मसीह क्राइस्ट के लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं। हम आपको पुनः स्थापना के लिए धन्यवाद देते हैं, अनुबंधों के लिए और हम सबको एक योग बनाने के लिए कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके। हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब हम थॉमस एस मॉन्सन के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं और हम उसको आज याद करते हैं।
To turn back the mighty Missouri River in its decreed course, as to stop.
जिसने नदी को उस तरह पीछे मोड़ दिया ताकि नदी रुक सके और उनकी अंतिम दिनों के संतों पे ज्ञान के सागर को बरसाए परमेश्वर। ये हमारी आशीष हो इस सम्मेलन में। इस दिन हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
अब अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार गिरजे के जनरल पदाधिकारियों और क्षेत्र सत्रों का समर्थन मत के लिए प्रस्तुत करेंगे।
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई विल नाउ प्रेजेंट टू यू द जनरल
अथॉरिटी। अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग से प्रस्तुत। भाइयों और बहनों, अब मैं प्रस्तुत करता हूं कि आपके समर्थन के चुनाव के लिए जनरल पदाधिकारियों और गिरजे के जनरल सहायक अध्यक्षताओं यह प्रस्तावित किया जाता है थॉमस स्पेंसर मॉन्सन को भविष्यवक्ता, दिव्य दर्शी, प्रकटीकर्ता और अंतिम दिनों के यीशु मसीह के गिरजे का प्रधान हेनरी बेनियन एयरिंग प्रथम अध्यक्षता के प्रथम सलाहकार और डीटर उच्च उठरोफ को प्रथम अध्यक्षता के दूसरे सलाहकार, जो इससे सहमत हैं प्रकट करें, जो विरोध यदि कोई प्रकट करें। यह प्रस्तावित किया जाता है कि हम स्पेंसर मारियो नेल्सन को 12 प्रेरितों के कोरम अध्यक्ष समर्थन किया जाए और कोरम के आगे के सदस्यों को भी रसल एम नेल्सन, डेलिन एच ऑक्स, एम रसल बैलर्ड, रॉबर्ट डी हिल्स, जेफरी आर हॉलन, डेविड ए बेडनार, क्विंटन एल कुक, टॉड क्रिस्टोफरसन, नील एल एंडरसन, रोनल्ड ए रेसबन, गैरी स्टीवेंसन और डेल ए गी रेडलैंड, जो इससे सहमत हैं प्रकट करें, जो विरोध करते हैं यदि कोई प्रकट करें। यह प्रस्तावित किया जाता है कि हम प्रथम अध्यक्षता के सलाहकारों को समर्थन करें और कोरम के 12 प्रेरितों को भविष्यवक्ता, दिव्यदर्शी, प्रकटीकर्ता, जो इससे सहमत हैं प्रकट करें। विरोध है अगर कोई तो प्रकट करें। भाई डोनाल्ड हॉलस्ट्रॉम और रिचर्ड जे मेंस सतर की अध्यक्षता में सदस्यों के रूप में सेवा नियुक्त करते हैं, जो सब इनको उनके सेवा के लिए प्रशंसा दिखाना चाहते हैं अपने हाथ उठाकर कैस कर सकते हैं। यह प्रस्तावित किया जाता है कि एल्डर जुआन ए उस्ता और प्रतीक कारो को समर्थन दे, जिन्हें सत्र के अध्यक्षता में सदस्य में नियुक्त किया जाता है, जो इन भाइयों को उनके नई नियुक्ति के समर्थन करते हैं प्रकट करें, और विरोध में कोई इसी संकेत से दिखा सकते हैं। यह प्रस्तावित किया जाता है कि हम प्रशंसा के साथ एल्डर स्टैनल गी एलिस, लेर और लॉरेंस और क्रेग जेविक को उन्हें जनरल को सेवा नियुक्ति करते हैं और उन्हें सम्मान स्थिति प्रदान करते हैं, जो हमारे साथ इन भाइयों के उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रशंसा दिखाना चाहते हैं कृपया प्रकट करें। यह प्रस्तावित किया जाता है कि हम निम्नलिखित से क्षेत्रीय सत्रों को सेवानिवृत्त करते हैं। पेड्रो ए एड्रू एटलेफ, एच एडलर एजन, एंजेल एल्च आर्खान, विसार बल दोरामा, क्रिस्टोफर से चार्ल्स रॉबर्ट, एम कॉल, जीन आर, चिडेस्टर रॉल्फ एल, ड्यून ड्यूजलुप एजल, डुआटे, पीटर एफ इवांस, फ्रांसिस्को डी एन ग्रंजा, यूरी ए गुस्चिन, किल्फर टी हैबर्टसो, एनिफियको, उदो इनियन, लुइस एम लिल, एले जाड्रो लोपेज, एल जीन क्लाउड मबाया, डेक्लिन हे मॉडू, अलेक्जेंडर टी मेलस्टर, जेरेड आर ओकोम्पो, एंड्रयू एम ओ रियड्रन, हेसस ए ऑर्ट्रिज, अभिनेरी पी पाजरो, सी हांग पॉन, रॉबर्ट सी रियान, जॉर्ज उलुइन रोमू, जॉर्ज एल सल्दीवार, सुरो शामिल अनिल सेम्पन्स, जो हमारे साथ इन भाइयों को लखनी सेवा के लिए प्रशंसा देना चाहते हैं, कृपया प्रकट करें। यह प्रस्तावित किया जाता है कि हम टॉर्बन एंजबर्ग टू को क्षेत्र सत्रों में सेवा करने के लिए समर्थन देते हैं। जो इससे सहमत हैं प्रकट करें, जो विरोध करते हैं प्रकट करते हैं। यह प्रस्तावित किया जाता है कि हम जनरल पदाधिकारियों क्षेत्रों और गिरजा के जनरल साहब, जो इससे सहमत हैं प्रकट करें, विरोध करते हैं अगर कोई प्रकट करें। जो कोई इन प्रस्तावों को विरोध करते हैं अपने स्टेक के अध्यक्ष से मिले। भाइयों और बहनों, हम आभारी हैं आपके निरंतर विश्वास और प्रार्थना गिरजे के मार्गदर्शकों के लिए।
धन्यवाद अध्यक्ष आयरिंग। युवा गायक मंडली, अब आई एम ट्राइंग टू बी लाइक जीसस और ही सेंट हिज सन का मिश्र गीत गाएगी। गीत के बाद हम 12 प्रेरितों के परिषद के एल्डर गैरी ई स्टीवेंसन को सुनेंगे। उनके पश्चात भाई स्टीफन डब्ल्यू ओन बोलेंगे, जो कि युवक महाअध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं। इसके पश्चात 12 प्रेरितों के परिषद के एल्डर क्विंटल एल कुक हमारा संबोधन करेंगे।
On August 21st of this year,
इस साल 21 अगस्त को दो दुर्लभ घटनाओं ने संसार भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। पहला हमारे प्यारे भविष्यवक्ता अध्यक्ष थॉमस स्मानसन का 90वां जन्मदिन समारोह था। उस समय मैं प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में कार्य कर रहा था और रोमांचित था कि ऑस्ट्रेलिया, वानुअटू, न्यूजीलैंड और फ्रेंच पॉलिनेशिया के संत ने न केवल उनके व्यक्तिगत अवसर को जानते थे बल्कि वे इसे मनाने में आनंद भी मना रहे थे। मैंने इस महान व्यक्ति के लिए उनके विश्वास और प्रेम की हार्दिक अभिव्यक्तियों में भाग लेने के लिए स्वयं को भाग्यशाली महसूस किया था। अपने भविष्यवक्ता के साथ अंतिम दिनों के संबंध को देखना बहुत ही प्रेरणादायक है। अवश्य अध्यक्ष मानसन ने अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के इच्छुक लोगों के प्रति सचेत थे। बताया आदर्श जन्मदिन उपहार है किसी ऐसे व्यक्ति को खोजे जो कठिन समय से गुजर रहा या बीमार या अकेला है और उसके लिए कुछ करें। मैं सिर्फ इतना ही मांगता हूँ अध्यक्ष थॉमस स्मानसन आपसे प्रेम करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। अन्य दुर्लभ और खगोलीय घटना जो उस दिन हो रही थी और लाखों का ध्यान आकर्षित कर रही थी वो थी पूर्ण सूर्य ग्रहण। 99 वर्षों में पहला मौका था जब ऐसा सूर्य ग्रहण हुआ था जो पूरे संयुक्त राज्य में दिखाई दे रहा था। क्या आपने कभी सूर्य ग्रहण देखा है? पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश को रोक देता है। ये सच्चाई मुझे अचंभित करती है। यदि आप मान लें कि सूर्य साइकिल के टायर के आकार का जितना है और चंद्रमा इसकी तुलना में मुश्किल से एक छोटे कंकड़ के आकार का होगा, ये कैसे संभव है कि हमारी गर्माहट प्रकाश और जीवन को आकार में अपेक्षाकृत छोटा पिंड लगभग पूरी तरह से रोक दे? यद्यपि सूर्य चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है, ये पृथ्वी से 400 गुना दूर भी है। पृथ्वी के दृष्टिकोण से पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की परस्पर स्थितियों के कारण सूर्य और चंद्रमा समान आकार के दिखाई देते हैं। जब दोनों एक रेखा में होते हैं तो चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को अवरुद्ध करता दिखाई देता। मेरे मित्र और परिवार जो पूर्व सूर्य ग्रहण में क्षेत्र में थे ने बताया कि कैसे प्रकाश अंधकार में बदल गया, तारे दिखने लगे और चिड़ियों ने गाना बंद कर दिया। हवा ठंडी हो गई क्योंकि ग्रहण वायु का तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस से अधिक कम कर सकता है। उन्होंने भय, विस्मय और चिंता की भावनाएं भी व्यक्त की, ये जानते हुए कि ग्रहण अपने साथ कुछ खतरे भी लाता है। हालांकि उनके सबने ग्रहण की घटनाओं के दौरान स्थायी आंख की क्षति का ग्रहण अंधेपन को रोकने के लिए सावधानी रखी थी, सुरक्षा संभव हो पाई थी क्योंकि उन्होंने विशेष फिल्टर लेंस से लैस चश्मे का उपयोग किया था जो उनकी आंखों को किसी संभावित हानि से बचाता था। उसी प्रकार जैसा बहुत ही छोटा चंद्रमा विशाल सूर्य को अवरुद्ध कर सकता है, इसके प्रकाश और गर्माहट को रोक सकता है, आत्मिक ग्रहण भी हो सकता है जब हम छोटी और कष्टकारी बाधाओं को इतने निकट आने की अनुमति देते हैं कि वे यीशु मसीह के प्रकाश की तीव्रता, चमक, गर्माहट और उसके शानदार सुसमाचार की सच्चाइयों को रोक देते हैं। एल्डर नील ए मैक्सवेल ने इस समरूपता की अधिक व्याख्या करते हुए कहा था, कभी कभी आदमी के अंगूठे जितनी छोटी वस्तु जब आंख के बहुत निकट लाई जाती है तो वो बहुत विशाल सूर्य को भी नहीं देख पाता, जबकि सूर्य अपने स्थान पर बना रहता है। यह अंधापन आदमी स्वयं लाता है। जब हम अन्य बातों को बहुत निकट लाते हैं उन्हें आगे रखने से स्वर्ग का हमारा दर्शन अवरुद्ध होता है। स्पष्ट रूप से हम में से कोई भी जानबूझ के स्वर्ग के हमारे दर्शन को अवरुद्ध या आत्मिक ग्रहण को हमारे जीवन में अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं कुछ विचारों को बांटूंगा जो आत्मिक ग्रहणों को रोकने में हमारी सहायता करेंगे जो हमें स्थायी आत्मिक नुकसान पहुंचाते हैं। क्या आपको विशेष चश्मे की मेरी व्याख्या याद है जो सूर्य ग्रहण को देखने से होने वाले आंखों के नुकसान या यहाँ तक कि ग्रहण के अंधेपन से रक्षा करते हैं? आत्मिक ग्रहण को बचाने वाले और कोमल आत्मिक लेंस से देखने के सुसमाचार दृष्टिकोण उपलब्ध होता है। इस प्रकार ये हमें आत्मिक अंधेपन से बचाता है। आओ हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। अपने हृदयों में भविष्यवक्ताओं के वचन और पवित्र आत्मा को अपने सलाहकार के रूप में अपने आंशिक रूप से और स्वर्गीय प्रकाश को सुसमाचार के चश्मे से देख सकते हैं और आत्मिक ग्रहण की हानि से बच सकते हैं। तो हम अपने चश्मे कैसे पहने? ये कुछ उदाहरण हैं। सुसमाचार चश्मे हमें बताते हैं कि प्रभु चाहता है कि हम प्रत्येक सप्ताह प्रभु भोज में शामिल हों। हम जानते हैं कि हम धर्मशास्त्रों का अध्ययन और प्रतिदिन प्रार्थना करें। शैतान हमें ऐसा न करने के लिए प्रलोभन में डालेगा और वो प्रतिदिन ध्यान भटकाकर और सांसारिक प्रलोभनों के द्वारा हमारी स्वतंत्रता को छीनना चाहता है। अय्यूब के समय में भी आत्मिक ग्रहण थे, उसकी व्याख्या है, उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है और दिन दोपहरी में वे रात के समान टटोलते फिरते हैं। भाइयों और बहनों, जब मैं सुसमाचार के चश्मे के द्वारा देखने की बात करता हूं, तो मैं ये सुझाव नहीं दे रहा कि हम चुनौतियों को मानने या उन पर चर्चा करने को स्वीकार न करें और जानबूझकर उन जालों और बुराइयों में फंस जाए जिन्हें शत्रु हमारे सामने रखता है। मैं आंखों में पट्टी बांधने के लिए नहीं कह रहा हूं। इसके विपरीत मैं ये सुझाव दे रहा हूं कि हम चुनौतियों को सुसमाचार के चश्मे से देखें। दृष्टिकोण अर्थपूर्ण संबंध में प्रासंगिक जानकारी देखने की योग्यता है। सुसमाचार दृष्टिकोण हमें दृष्टि को पूर्ण अनंत काल के दर्शन तक को फैला देता है। जब आप सुसमाचार के चश्मे पहनते हैं तो आप अपनी प्राथमिकताओं, अपनी समस्याओं, अपने प्रलोभनों और अपनी गलतियों पर भी अपने सोचने के तरीके में बढ़ा हुआ दृष्टिकोण, ध्यान और दर्शन प्राप्त होगा। आप उस चमकदार प्रकाश को देखेंगे जिसे आप उसके बिना नहीं देख सकते थे। ये विडंबना है कि न केवल नकारात्मक है जो आत्मिक ग्रहण ला सकता, अक्सर सराहनीय या सकारात्मक प्रयास भी इतने निकट हो जाते हैं कि सुसमाचार प्रकाश को अवरुद्ध कर देते हैं और अंधकार लाते हैं। इन खतरों को भटकाओं में शामिल हो सकता है शिक्षा और समृद्धि, शक्ति और प्रभाव, अभिलाषा, प्रतिभा और उपहार भी। कुछ अन्य तत्व हैं जैसे शिक्षा और समृद्धि, शक्ति और प्रभाव, महत्वाकांक्षा, यहाँ तक कि प्रतिभाएं और उपहार, जो भी यदि सुसमाचार दृष्टिकोण में और उचित माप में नहीं रखे जाते हैं तो हमारे जीवन में प्रकाश के बजाय अंधकार ला सकते हैं। अध्यक्ष डीटर एपुडोर्फ ने सिखाया आगे कि जब किसी गुण को चरम पर ले जाया जाता है तो पाप बन जाता है। एक ऐसा समय आता है जब उपलब्धियां बोझ बन सकती है और महत्वाकांक्षाएं गर्दन का फंदा। मुझे अधिक विस्तार उन उदाहरणों को बांटना चाहिए जो हमारे स्वयं के आत्मिक ग्रहण बन सकते हैं। हाल में मैंने BYU की महिला सम्मेलन में बोला था। मैंने समझाया था कि कैसे सोशल मीडिया की तकनीकी उद्धारकर्ता की ज्ञान की प्रत्येक राज, जाति, भाषा और लोगों में फैलाने में मदद करती है। इन तकनीकी में गिरजे की वेबसाइट जैसे LDS.org, Mormon.org, मोबाइल एप्स जैसे गॉस्पल लाइब्रेरी, मॉर्मन चैनल, LDS टूल्स और फैमिली ट्री और सोशल मीडिया मंच जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और पिनरेस्ट, ये सोशल मीडिया मंचों में लाखों भिन्न तरीकों के लोग इनके द्वारा दूसरों से बातचीत करते हैं और वे सुसमाचार को बांटने में बहुत प्रभावकारी और सक्षम बन गए हैं। सभी गुणों और उचित उपयोग के साथ इन तकनीकों के साथ इनके जोखिम जुड़े हैं। जब इनसे अधिक निकट जाता है तो ये हमें आत्मिक ग्रहण डाल सकते हैं, सुसमाचार की चमक और गर्माहट को खतरनाक रूप से अवरुद्ध कर सकते हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल एप्स और गेम्स बहुत अधिक समय देने वाले हो सकता है और आमने सामने की बातचीत को कम कर सकता है। व्यक्तिगत बातचीत की ये नुकसान विवाह को प्रभावित करता है और बहुमूल्य आत्मिक व्यवहारों का स्थान ले सकता है और सामाजिक कौशल विकास को दबा सकता है, विशेषकर युवाओं के बीच। सोशल मीडिया में संबंध में दो अतिरिक्त जोखिम आदर्श वास्तविकता और कमजोर बनाने वाली तुलनाएं हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली कई, यदि अधिक नहीं, फोटो जीवन को बहुत बेहतरीन रूप से चित्रित की जाती है जो कि अक्सर सच्चाई से दूर होती है। हम सभी ने घर की सजावट, शानदार छुट्टियों के स्थान, लोगों को मुस्कुराते हुए, विस्तृत भोजन की तैयारी और बहुत से परे लगने वाले शरीर की सुंदर मुद्राओं के चित्र देखे हैं। यहाँ उदाहरण के लिए एक ऐसा चित्र जिसे आप किसी के सोशल मीडिया अकाउंट पर देखा होगा, हालांकि ये असल जीवन में क्या चल रहा है उसकी पूरी तस्वीर को प्रदर्शित नहीं करता। अपने स्वयं के साधारण लगने वाले जीवन की तुलना दूसरों की भली भांति संपादित, पूर्ण रूप से तैयार जीवन करना जिस प्रकार से सोशल मीडिया में प्रदर्शित किया जाता है, हम निराशा, ईर्ष्या और असफलता की अनुभूतियों से ग्रसित कर सकती है, यहाँ तक कि असफलता भी। एक व्यक्ति जिसने अपनी स्वयं की बहुत सारी फोटो बांटी हैं, कहा शायद केवल मजाक के लिए, खुश होने का क्या फायदा यदि आप इस पोस्ट नहीं कर रहे हैं। जैसा आज सुबह बहन अक्सरसन हमें बताया, जीवन में सफलता इस बात से नहीं मिलती कि हमें कितने लाइक मिले हैं या कितने सोशल मीडिया मित्र या अनुयायी हैं। यह हालांकि सार्थक रूप से दूसरों से जुड़ने और दूसरों के जीवन में प्रकाश देने से मिलती है। आशा है कि हम अधिक वास्तविक होना सीखें, अधिक हास्य खोजें और कम निराशा का अनुभव करें। और हम जब ऐसे चित्र देखते हैं तो परिपूर्ण दिखने वाली सच्चाई को चित्रित करते हैं और जो कई बार कमजोर बनाने करने वाली तुलनाओं की ओर ले जाती है। तुलना करना जाहिर है, जाहिर तौर पर केवल हमारे समय की समस्या नहीं है। प्रेरित पौलुस ने अपने समय के लोगों को चेतावनी दी थी, अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। तकनीक के इतने अधिक उचित और प्रेरित उपयोगों के होते हुए इसका उपयोग दूसरों को सिखाने, प्रेरणा देने और ऊपर उठाने और उनके उत्तम बनने के लिए उत्साहित किया जाए, बजाय इसके कि हम मिथ्या रूप से स्वयं के परिपूर्ण प्रस्तुत करें। उभरती पीढ़ी को तकनीकी का धार्मिक उपयोग सिखाने और प्रदर्शित करने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं उसे करना चाहिए और इससे संबंधित खतरों और विनाशकारी उपयोगों के विषय में चेतावनी देनी चाहिए। सुसमाचार लेंस के माध्यम से सोशल मीडिया को देखकर इसे अपने जीवन के लिए आत्मिक ग्रहण बनने से रोक सकते हैं। आइए अब हम बहुत पुरानी ठोकर खिलाने वाली बाधा के बारे में बात करें। विनम्रता, जो कि प्रभु की इच्छा के प्रति समर्पित होने की चाहत है। घमंड का विलोम शब्द है। जब हम घमंडी होते हैं तो हम स्वयं को सम्मान देते हैं, दूसरों को सम्मान देने के बजाय प्रभु सहित। घमंड अक्सर प्रतिस्पर्धा करता है, इसमें दूसरों से अधिक प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है और स्वयं को दूसरों की तुलना में बेहतर समझते हैं। घमंड में अक्सर क्रोध और घृणा की भावनाएं उत्पन्न होती है, ये द्वेष बनकर रहती और क्षमा नहीं करती। घमंड को विनम्रता का मसीह समान गुण से निगल जाना है। संबंध विशेषकर परिवार और प्रियजनों के साथ निकट संबंध, यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच के संबंध भी विनम्रता में प्रगाढ़ होते हैं और घमंड में अड़चन आती है। कई वर्ष पूर्व एक बड़े फुटकर व्यापार के अधिकारी ने मुझे अपनी कंपनी के बारे में बताया कि इसके एक प्रतियोगी द्वारा खरीदा जा रहा था और वो बहुत से अन्य मुख्यालय कर्मचारी बहुत चिंतित थे कि उनकी नौकरी जा सकती है। ये जानते हुए कि मेरी खरीदने वाली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से जान पहचान थी, उसने कहा यदि मैं उसका परिचय उनसे करा दूं और उसके पक्ष में जोरदार सिफारिश कर दूं, यहाँ तक कि उनसे भेंट की व्यवस्था करने के लिए भी कहा। उसने अंत में कहा, आप जानते हैं वे क्या कहते हैं, नम्र का नाश होगा। मैं समझ गया उसकी टिप्पणी हास्य के रूप में अधिक थी, मैं इस मजाक को समझ गया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था जो मुझे लगा कि उसके लिए उपयोगी हो सकता है। मैंने उत्तर दिया, दरअसल जो वे कहते हैं इसका अर्थ ये नहीं है, दरअसल ये बिल्कुल उल्टा है। वे कहते हैं नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। गिरजे में तेरे अनुभव के साथ साथ मेरे व्यावसायिक पेशे में सबसे महान, सबसे प्रभावी लोग जिन्हें मैं जानता हूँ वे सबसे नम्र विनीत लोगों में से एक हैं। विनम्रता और दीनता में गहरा संबंध है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हृदय से दीन और नम्र के अलावा परमेश्वर के सामने और कोई भी स्वीकार्य नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम विनम्रता के गुणों को गले लगाकर घमंड के आत्मिक ग्रहण से बचने का प्रयास करें। संक्षेप में, सूर्य ग्रहण अवश्य ही प्रकृति की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके दौरान सूर्य की सुंदरता, गर्माहट और प्रकाश अपेक्षाकृत बहुत छोटी वस्तु द्वारा रोका जा सकता है जिसे अंधकार और ठंड होती है। ऐसी ही घटना का उल्लेख आत्मिक अर्थों में भी किया जा सकता है। जब अन्यथा छोटी और महत्वहीन बातें बहुत ही निकट आती हैं, तो यीशु मसीह के सुसमाचार की सुंदरता, गर्माहट और स्वर्गीय प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। इसके बदले ठंडा अंधकार उत्पन्न होता है। सूर्य ग्रहण के क्षेत्र में लोगों की दृष्टि की रक्षा करने के लिए बनाए गए चश्मे से अस्थायी नुकसान से बचा जा सकता है। सुसमाचार का चश्मा कि सुसमाचार सिद्धांतों और नियमों का ज्ञान और गवाही सुसमाचार दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो इसी प्रकार महान आत्मिक सुरक्षा और स्पष्टता प्रदान करते हैं, जो आत्मिक ग्रहण के नुकसान से ग्रसित हो सकते हैं। यदि आपको किसी बात का पता चले जो लगता है कि आपके सुसमाचार जीवन के आनंद और प्रकाश को अवरुद्ध कर रहा है, तो मैं निमंत्रण देता हूँ कि इसे सुसमाचार के चश्मे से देखें और महत्वहीन और संगत बातों को अपने महान आनंद की महान योजना के अनंत दृष्टिकोण को अवरुद्ध करने की अनुमति न दें। संक्षेप में, जीवन के भटकाओं को स्वर्ग के प्रकाश से अवरुद्ध न करने दें। मैं गवाही देता हूं कि चाहे कोई भी बाधा सुसमाचार प्रकाश को रोके, फिर भी प्रकाश वहां कायम रहता है। कर्मा हर सच्चाई और चमक का ये स्रोत यीशु मसीह का सुसमाचार है। मैं प्रिय स्वर्गीय पिता, उसके पुत्र यीशु मसीह और पुत्र की हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में उसकी भूमिका की गवाही देता हूं। In the name of Jesus Christ, Amen.
कई वर्ष पहले अध्यक्ष गॉर्डन बी हिंकली ब्रिगम यंग विश्वविद्यालय फुटबॉल खेल में आए थे। वह वहां घोषणा करने आए थे कि स्टेडियम का नाम टीम के साथ रखा जाएगा। प्रिय कोच, जो कि सेवा मुक्त होने वाले थे, कि टीम किसी भी तरह मैच जीतना चाहते थे। आधे समय के दौरान अध्यक्ष हिंकली लॉकर रूम में कुछ प्रोत्साहित शब्दों के बांटने गए थे। उनके प्रेरित शब्दों द्वारा उन्हें खेल जीतना चाहते थे। आज मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि जो चिंता करते हैं, उन्होंने मुक्तपूर्ण गलती की है। जीवन में जीत नहीं रहे। सच है, अवश्य ही हम सबों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हो सकता है कुछ टीम में हमें एक ऐसे मौसम में कोई भी खेल न खेला गया हो, लेकिन असल जीवन में ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने परिपूर्ण प्रयाश्चित किया और हमें पश्चाताप का उपहार दिया। परिपूर्ण आशा की चमक और लौटने का हमारा मार्ग एक सफल जीवन है। बहुत बार हम सोचते हैं कि पश्चाताप दुख देने वाला और कष्टदायी होता है, लेकिन परमेश्वर की योजना प्रसन्नता की योजना है, न कि दुख की योजना। पश्चाताप ऊपर उठता है और सुधार करता है। यह पाप है, इसके कारण दुख आता है। पश्चाताप हमारे बचाव का मार्ग है और सुधार करता है। यह पाप है जिनके कारण मुख आता है। पश्चाताप हमारे बचाव का मार्ग है, जैसा एल्डर डी डॉ क्रिस्टोफर ने समझाया है। बिना पश्चाताप के जीवन में कोई वास्तविक प्रगति या सुधार नहीं होता। केवल पश्चाताप के द्वारा हम यीशु मसीह के प्रायश्चित अनुग्रह और उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। हमें स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और शांति की ओर ले जाता है। मेरा संदेश सबों के लिए, विश्वास विशेषकर युवाओं के लिए है कि पश्चाताप हमेशा एक सकारात्मक कदम है। हम जब पश्चाताप के विषय में बोलते हैं, तो हम केवल स्वयं का सुधार करने के लिए हमारे प्रयासों के बारे में बात नहीं करते। वास्तव में पश्चात इससे अधिक होता है। ये प्रभु यीशु मसीह में है और हमारे पापों को क्षमा करने की उसकी शक्ति में विश्वास द्वारा प्रेरित होता है। जैसे एल्डर एलडी रंडन ने हमें सिखाया, बिना मुक्तिदाता के पश्चाताप हमारे व्यवहार को सुधारने की दुखद प्रक्रिया है। सच पश्चाताप हमें हमारे आज्ञाकारिता को एक जिम्मेदारी प्रतिज्ञा बनाने के लिए प्रेरित करता है। बत्तीसवीं से आरंभ होकर और प्रत्येक सप्ताह यीशु के प्रभु भोज पर नवीन करने तक, जहाँ तक हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे पास हमेशा उसकी आत्मा कायम रहेगी, उस संपूर्ण आनंद और शांति के साथ जो उसकी निरंतर संगति से आती है। पश्चाताप का यह प्रतिफल है कि यही है कि पश्चाताप को आनंददायी बनाता है। मुझे उबाव पुत्र का दूसरा अच्छा लगता है। उस निर्णय शिक्षण के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात है। जब उदाव पुत्र अपने आप में आया था, स्वरों के बाड़े में बैठा, चाहता हुआ कि उन फलियों से अपने पेट भर ले जो सुअर खाते हैं। उसने अनंत महसूस किया कि जो उसने केवल अपने पिता के धन को बर्बाद किया है बल्कि अपने जीवन को भी बर्बाद किया है। ये विश्वास होते हुए कि उसका पिता शायद उसे फिर से स्वीकार कर ले, यदि अपने बेटे के सामने समान नहीं हो तो कम से कम एक सेवक के रूप में हो। मुझे अक्सर बेटे के घर के लिए लौटने की लंबी यात्रा के विषय में आश्चर्य होता है। क्या ऐसा समय आएगा जब उसे झिझक हुई और आश्चर्य हुआ हो, अपने पिता द्वारा मैं किसे स्वीकार किया जाऊंगा? हो सकता है कि वह कुछ कदम पीछे सुअर के बाड़े में लौटा भी हो। कल्पना करें, कहानी किसी प्रकार भिन्न होती है। यदि वह वापस लौट गया होता लेकिन विश्वास के कारण वह आगे बढ़ते रहा और विश्वास के कारण उसके पिता रहा, धैर्य से प्रतीक्षा करते रहे अंत तक। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगा लिया और बहुत चूमा। और पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाऊं और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूते पहनाऊं, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया, खो गया था अब मिल गया। पश्चाताप प्रत्येक के लिए है। भाई और बहनों, हम सब उड़ाऊ पुत्र के समान है। उस सबों को अपने आप में आना है अक्सर एक से अधिक बार और उसे मार्ग को चुनना है जो हमें घर वापस ले जाता है। ये चुनाव हम प्रतिदिन करते हैं अपने जीवन भर। हम अक्सर पश्चाताप को घर को घोर पापों से जोड़ते हैं जिसमें महान परिवर्तन आवश्यकता होती है, लेकिन पश्चाताप प्रत्येक के लिए है। जो वर्जिन मार्गों में भटक जाते हैं और खो गया है उनके लिए भी, जो तंग और सक्रिय रास्ते में चलते हैं और अब धीरज धरते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। पश्चाताप सही मार्ग में रहता है और सही मार्ग में हमें रहने देता है। ये उनके लिए है जिनमें विश्वास करना शुरू किया है, उनके लिए भी जिसने जीवन भर विश्वास नहीं किया और जिन्होंने फिर से विश्वास करना आरंभ करना किया है। जैसे एल्डर डेविड ए बेडनर ने सिखाया, हम पृष्ठ रूप से समझते हैं कि पश्चाताप पापियों के लिए है, फिर भी मैं निश्चित नहीं हूँ कि हम जानते हैं और समझते हैं कि पश्चाताप संतों के लिए है, भले पुरुष और महिलाओं के लिए जो आज्ञाकारी योग्य और बेहतर बनने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में एक प्रचार परीक्षण केंद्र किया गया था जब बिल्कुल प्रचारक आए थे। मैं बहुत प्रभावित हुआ था जब मैंने उन्हें देखा और उनकी आंखों में चमक पर ध्यान दिया। वे बहुत आनंदित और खुश थे। तब मुझे एक विचार आया, उन्होंने पश्चाताप के लिए विश्वास का अनुभव किया है, इसी कारण वे आनंद और आशा से भरे हुए हैं। मैं नहीं सोचता कि इस अर्थ कि उन सभी ने अतीत में गंभीर अपराध किए थे, लेकिन मैं सोचता हूं कि वे जानते हैं कि पश्चाताप कैसे करना है। वे जान गए थे कि पश्चाताप सकारात्मक होता है। वे इस आनंददायी संदेश को संसार से बांटने के लिए तैयार और उत्साहित थे। ऐसा ही होता है कि जब हम पश्चाताप के आनंद को महसूस करते हैं कि इनोस के कारण पर विचार करें, उसने स्वयं के अपने आप में क्षण आने की महसूस किया और उसके अपराध संपूर्ण से क्षमा कर दिए जाने के बाद उसका धैर्य उसी क्षण से दूसरों के लिए करना में मुड़ गया था। इनोस ने अपना शेष जीवन दूसरों को पश्चाताप के लिए निमंत्रण करने में बिताया और उसने उसके संसार के अन्य कामों से आनंद प्राप्त किया। पश्चाताप ऐसा करता है, यह हमारे हृदय को हमारे साथियों की ओर मोड़ देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आनंद हम महसूस करते हैं यह सबके लिए है। पश्चाताप जीवन भर के लिए है। मेरे मित्र ने मुझे बताया, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता और धर्मशास्त्र अध्ययन करता है। जब से मैं मिशन से लौटा, निरंतर परमेश्वर के अच्छे वचन से पोषण प्राप्त करने के कारण मैं सही मार्ग पर बना रहा। आप जो पूरे समय कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो आपस लौट रहे हैं, इसे ध्यान से सुनो। केवल गवाही प्राप्त करने ही प्राप्त नहीं है, उसको इसे कायम करना है और मजबूत करना है। प्रत्येक प्रचारक जानता है कि यदि अपने साइकिल के पैडल माना रोक दिया तो यह गिर जाएगा। उन सबों को क्षमा करना चाहते हैं युवा अविवाहित माता पिता दादा दादी नाना नानी और हाँ पर दादा पर नानी मैं भी आपको आपको सही मार्ग में आने का निमंत्रण देता हूँ। आरंभ करने का समय अब है। अपने पश्चाताप के दिन में ना करें। फिर हम एक बार अपने निर्णय ले लिया है, सही मार्ग में बने रहें। हमारा पिता प्रतीक्षा कर रहा है, आपसे मिलने की इच्छा रखता है। इसके लिए पूरे दिन भर उसकी बाहें फैली हुई हैं। प्रतिदिन इसका प्रयास करने से योग्य है। नफी से इन शब्दों को याद करें। तुम दृढ़ता में विश्वास करते हुए आशा की संपूर्ण चमक और परमेश्वर और सभी मनुष्य से प्रेम करते हुए हमेशा आगे बढ़ते चलो। इसलिए यदि तुम मसीह की वाणी का प्याला पीते हुए और अंत तक धीरज धरते हुए आगे बढ़ते रहे। सुनो पिता, इस संसार कहता है कि मैं तुम्हें आनंद अंत में तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। कभी कभी यात्रा लंबी लगेगी, आखिरकार यह अनंत जीवन की ओर यात्रा है, लेकिन यह आनंदपूर्ण यात्रा हो सकती है यदि हम इसे यीशु मसीह में विश्वास और उसके प्रत्यक्ष में आशा के साथ जारी रखते हैं। मैं प्रमाणित करता हूं कि जिस क्षण हम अपना पैर पश्चाताप के मार्ग पर रखते हैं, हम उद्धारकर्ता की मुक्ति देने वाली शक्ति को अपने जीवन में निमंत्रण करते हैं। और यीशु मसीह के नाम से ये सब कहता हूँ, आमीन।
हम कौन है और हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य के प्रति विनम्रता आवश्यक है। ब्रिटिश मिशन में युवक के रूप में मेरी सेवा से मैंने ब्रिटिश हास्य का आनंद लिया है। कभी कभी स्वयं के व्यक्तित्व के विपरीत कथन साधारण विनम्र जीवन के दृष्टिकोण द्वारा इसका वर्णन किया जाता है। इसका उदाहरण है गर्मियां कैसे बताई जाती हैं। ब्रिटिश गर्मियां अपेक्षाकृत थोड़ी और अप्रत्याशित होती हैं। जैसा एक लेखक ने दबी जबान में कहा था, मुझे ब्रिटिश गर्मियों से प्रेम है। ये साल का मेरा प्रिय दिन होता है। मेरा पसंदीदा ब्रिटिश कार्टून किरदार का चित्र उसके बिस्तर पर लगा था। एक सुबह देर से उठने पर वो अपने कुत्ते से बोली, हे भगवान, हम देर तक सोते रह गए और लगता है गर्मियां खत्म हो गई। इस सुंदर पृथ्वी पर हमारा जीवन के लिए इस हास्य में समानता है। धर्मशास्त्र स्पष्ट है कि हमारा बहुमूल्य नश्वर अस्तित्व बहुत कम समय का है। ऐसा कहा जा सकता है कि अनंत दृष्टिकोण से पृथ्वी पर हमारा समय उतना ही कम है जितना ब्रिटिश गर्मियों का। कभी कभी मनुष्य का उद्देश्य और अस्तित्व भी बहुत विनम्र शब्दों से दर्शाया जाता है। भविष्यवक्ता मूसा ऐसे माहौल में बड़ा हुआ था जिसे आज के समय में सुख सुविधाओं से संपन्न कहा जाता है। जैसा अनमोल मोती में लिखा है, प्रभु ने मूसा को उसके भविष्यवक्ता संबंधी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करते समय उसे संसार और मनुष्य के संतानों का संक्षिप्त इतिहास दिखाया था जिनकी सृष्टि की गई है और थी। मूसा की प्रतिक्रिया कुछ निराशाजनक थी। अब मैं जानता हूं कि मनुष्य कुछ नहीं है, इस बात को मैंने कभी नहीं समझा था। बाद में कोई भी महत्वहीनता की अनुभूतियां जो मूसा ने महसूस की होंगी उनका खंडन करते हुए परमेश्वर ने अपने सही उद्देश्यों की घोषणा की, क्योंकि देखो ये मेरा कार्य है और मेरी महिमा है, मनुष्य के अमरत्व और अनंत जीवन को कार्यान्वित करना। परमेश्वर के सामने हम सब एक समान है, उसका सिद्धांत स्पष्ट है। मॉर्मन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के लिए सब समान है, चाहे काले हों या गोरे, गुलाम हों या स्वतंत्र, पुरुष हों या स्त्री, कोई भी हो, कोई भी जो पिता की योजना में जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा या आर्थिक परिस्थितियों के गुणों के कारण श्रेष्ठ होने का दावा करता है वो नैतिक रूप से गलत है। और हमारे पिता के सब बच्चों के लिए प्रभु के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझता है। दुर्भाग्य से हमारे समय में समाज के लगभग प्रत्येक हिस्से में हम अहंकार और घमंड के दिखावे को देखते हैं, जबकि विनम्रता और परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारी कम समझी जाती है। बहुत से समाज मूलभूत सच्चाइयों को नहीं समझते और न ही जानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर क्यों हैं। सच्ची विनम्रता जो कि हमारे लिए प्रभु के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है, बहुत कम दिखाई देती है। मसीह की विनम्रता, धार्मिकता, चरित्र और शिक्षा की अहमियत को समझना महत्वपूर्ण है, जैसा कि धर्मशास्त्रों में समझाया गया है।
इन मसीह समान खूबियों और गुणों विशेषकर विनम्रता का दिन प्रतिदिन के आधार पर निरंतर प्रयास करने की जरूरत को हम कम आंकना मूर्खता है। धर्मशास्त्र स्पष्ट है कि जब ये जीवन तुलनात्मक रूप से छोटा है, परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्मन की पुस्तक में अमुलेख, जो कि अल्मा का प्रचारक साथी था, उसने कहा था, ये जीवन परमेश्वर से मिलने के प्रति लोगों की तैयारी का समय है। हाँ देखो, इस जीवन का समय लोगों के परिश्रम करने का समय है। हम नहीं चाहते मेरे कार्टून किरदार के चित्र के समान इस जीवन भर सोते रहें। संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता की विनम्रता और बलिदान का उदाहरण इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। उद्धारकर्ता परमेश्वरत्व का एक सदस्य होते हुए भी दीन बालक के रूप में पृथ्वी पर आया और जिंदगी जीने को तैयार था, जिसमें अपने भाइयों और बहनों को सिखाना और चंगा करना और अंततः अपने प्रायश्चित को परिपूर्ण करने के लिए गतसमनी में और सलीब पर अथाह कष्ट को सहना शामिल था। प्रेम और विनम्रता की मसीह की इस भूमिका को उसकी कृपा के तौर पर जाना जाता है। उसने ये प्रत्येक पुरुष और स्त्री के लिए किया था जिसकी सृष्टि परमेश्वर ने की है या करेगा। हमारा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उसकी संतान सेलेस्टियस महिमा की उनकी चाहत में निरुत्साहित या इसका त्याग कर दें। जब हम वास्तव में पिता परमेश्वर और पुत्र मसीह पर विचार करते हैं कि वे कौन हैं और उन्होंने हमारे लिए क्या किया, तो हम श्रद्धा, आश्चर्य, कृतज्ञता और विनम्रता से भर जाते हैं। उसका गिरजा स्थापित करने में प्रभु की मदद करने के लिए विनम्रता आवश्यक है। अल्मा ने अपने समय में एक प्रश्न पूछा था जो आज भी प्रासंगिक है। यदि तुमने हृदय में परिवर्तन अनुभव किया है, मुक्त भरे प्रेम गीत गाने की इच्छा की है, मैं पूछता हूँ, क्या अब भी तुम्हारी यही इच्छा है? अल्मा आगे कहता है, यदि तुम्हें मन ही मन मरने के लिए कहा जाए ताकि तुम पर्याप्त मात्रा में विनम्र हो। प्रत्येक बार मैं छोटे अल्मा को परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए राज्य के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका का त्याग करने के बारे में पढ़ता हूँ, तो मैं प्रभावित हो जाता हूँ। अल्मा के पास परमेश्वर पिता और पितु यीशु मसीह की प्रगाढ़ गवाही थी और उनके प्रति पूर्ण रूप से और बिना शर्त जिम्मेदारी महसूस किया था। उसके पास उचित प्राथमिकताएं और प्रतिष्ठा और पद का त्याग करने की विनम्रता थी, क्योंकि उसने महसूस किया था कि प्रभु की सेवा करना अधिक महत्वपूर्ण था। हमारे जीवन में पर्याप्त विनम्रता होना गिरजे की स्थापना में मदद के लिए विशेष रूप से बहुमूल्य है। गिरजे के इतिहास का एक उदाहरण इसे समझने में बेहतर मदद कर सकता है। जून 1837 में प्रत्येक हिब्रसी किम्बल को यीशु मसीह के सुसमाचार को इंग्लैंड ले जाने और उस राष्ट्र के लिए उद्धार के द्वार खोलने का भविष्यवक्ता जोसेफ प्रेरित हुए थे। जब वो किर्टलैंड मंदिर में थे, प्रेरित ऑर्सन हाइड और कुछ अन्य लोगों को उनके साथ जाने के लिए नियुक्त किया। एल्डर किम्बल की प्रतिक्रिया उल्लेखनीय थी, इस तरह के महत्वपूर्ण मिशन के लिए नियुक्त किए जाने के विचार मेरी सहने से अधिक था। मैं उस पोस्ट तले लगभग दबने ही वाला था कि मुझ पर रखा गया था। फिर भी उन्होंने पूर्ण विश्वास, प्रतिबद्धता और विनम्रता से उस मिशन को लिया था। कई बार विनम्रता नियुक्तियों को स्वीकार करना होता और जब हम योग्य महसूस नहीं करते, कई बार विनम्रता विश्वसनीयता से सेवा करनी होती है जब हम अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लायक महसूस करते हैं। विनम्र मार्गदर्शक मौखिक के रूप में और उदाहरण द्वारा स्थापित करते हैं कि हम कहां से सेवा करते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कितने विश्वसनीयता से हम सेवा करते हैं। कई बार विनम्रता भावना पर काबू होता है। जब हम महसूस करते हैं मार्गदर्शकों या अन्य सदस्यों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। 23 जुलाई 1837 को भविष्यवक्ता एल्डर थॉमस वी मार्श 12 प्रेरितों की परिषद के अध्यक्ष से मिले थे। एलन मार्श जाहिर तौर पर परेशान थे कि भविष्यवक्ता ने उनकी परिषद के 2 सदस्यों को बिना उनसे सलाह किए इंग्लैंड जाने के लिए नियुक्त किया था। जब जोसेफ एल्डर मार्श से मिले, किसी भी ठेस पहुंचाने वाली भावनाओं को एक तरफ रखा गया और भविष्यवक्ता ने उल्लेखनीय प्रकटीकरण प्राप्त किया। ये अब सिद्धांत और अनुबंध के खंड 112 में है। आयत 10 में लिखा है, तुम विनम्र रहो और प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा हाथ थामे तुम्हारा नेतृत्व करेगा और तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। ये प्रकटीकरण ठीक उसी दिन प्राप्त हुआ था जब एल्डर किम्बल हाइड और जॉन गुडसन पूर्ण विनम्रता से यीशु मसीह के पुनर्स्थापित सुसमाचार की इंग्लैंड के प्रेसिडेंट वॉक्सहॉल चैपल में घोषणा कर रहे थे। यह इस प्रबंध में पहली बार था जब प्रचारकों ने पुनर्स्थापित सुसमाचार की घोषणा उत्तरी अमेरिका के बाहर की थी। उनके प्रचार प्रयास से लगभग तुरंत परिवर्तित बपतिस्मे से हुए और उनके विश्वसनीय सदस्यों को राह दिखाई थी। इस प्रकटीकरण के बाद के हिस्से हमारे समय के प्रचारक प्रयास का मार्गदर्शन करते हैं। इनमें इस प्रकार लिखा है, जिस किसी को भी तुम मेरे नाम में भेजोगे, मेरे राज्य का द्वार खोलने की शक्ति होगी किसी भी राष्ट्र में। जितना अधिक वे स्वयं को मेरे सम्मुख विनम्र करेंगे और मेरे वचन का पालन करेंगे और मेरी आत्मा की वाणी सुनेंगे। विनम्रता ने प्रभु को अपने गिरजे को लिखने तरीके से स्थापित करने के लिए इस अविश्वसनीय प्रचार प्रयास की अनुमति थी। कृतज्ञता पूर्वक इसे आज हम इस गिरजे में लगातार देखते हैं। सदस्य उभरती पीढ़ी सहित मिशन में सेवा करने के लिए अपने समय का त्याग करते हैं और शिक्षा और रोजगार में विलंब करते हैं। कई वरिष्ठ सदस्य परमेश्वर की सेवा करने के लिए किसी भी क्षमता में नियुक्त किए जाने पर रोजगार छोड़ते हैं और अन्न बलिदान देते हैं। उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम व्यक्तिगत बातों को हमारा ध्यान हटाने या भटकाने की अनुमति नहीं देते हैं। गिरजे की सेवा में विनम्रता की जरूरत होती है। हम सामर्थ्य, मन और शक्ति से विनम्रता पूर्वक सेवा करते हैं जबकि नियुक्त किए जाते हैं। गिरजे के प्रत्येक स्तर पर विनम्रता के मसीह समान गुणों को जानना महत्वपूर्ण है। व्यक्तियों को परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार होने में मदद के लिए निरंतर विनम्रता आवश्यक है। प्रभु का सम्मान करने और स्वयं को उसकी इच्छा के लिए समर्पित करने के लक्ष्य को आज समाज में उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना अतीत में दिया जाता था। अन्य धर्मों में कुछ ईसाई मार्गदर्शक विश्वास करते हैं कि हम उस संसार में रहते हैं जिसमें मसीहत उपयुक्त नहीं है। पीढ़ियों से धर्म आधारित विनम्रता की गुण और नम्रता और खामोशी के सामाजिक गुण मुख्य आदर्श रहे। आज के संसार में घमंड, दिखावा और कथित सत्यता पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है, जिसे कई कारण कई बार सच्ची विनम्रता कम हो जाती है। खुशी के लिए कुछ लोग नैतिक मूल्यों का सुझाव देते हैं जिसमें शामिल है वास्तविक बने, मजबूत बने, उत्पादक बने और अति महत्वपूर्ण अन्य लोगों पर भरोसा न करें, क्योंकि आपका भाग्य आपके हाथ स्वयं आपके हाथों में है। धर्मशास्त्र भिन्न दृष्टिकोण को बताते हैं। वो सुझाव देते हैं कि यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनना चाहिए। ये परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारी की शक्तिशाली अनुभूति और जीवन के प्रति विनम्र दृष्टिकोण को स्थापित करने पर जोर डालता है। राजा बिन्यामीन ने सिखाया कि प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर का शत्रु है और बताता है कि हमें पवित्र आत्मा के प्रलोभनों के प्रति समर्पित होने की जरूरत है। अन्य बातों के साथ उसने समझाया था कि इनमें विनम्र, नम्र, धैर्यवान और प्रेम से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। कुछ प्राकृतिक मनुष्य और योग्यताओं के उत्सव के रूप में प्रामाणिकता का दुरुपयोग करते हैं, जो कि विनम्रता, करुणा, दया, क्षमा और शिष्टता के विपरीत है। परमेश्वर के संतान के रूप में हम अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता का उत्सव मना सकते हैं। गैर मसीही व्यवहार का बहाना या उसको प्रमाणित करने के रूप में उपयोग किए बिना विनम्रता की हमारी खोज में आधुनिक इंटरनेट घमंड को दूर करने के लिए चुनौतियां पैदा करता है। दो उदाहरण हैं, मुझे देखो दृष्टिकोण, स्वयं उसे प्राप्त ना करना जो वे करना चाहते हैं, उसे इस प्रकार करना जो कि जरूरत से अधिक अनुपयोगी है, या सामाजिक माध्यम पर लंबी क्रोध की बातें लिखना। एक दूसरा उदाहरण है विनयपूर्ण सेखी मारना। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, साधारण दिखना या स्वयं के व्यक्तित्व के विपरीत कथन या चित्र जिसकी मुख्य उद्देश्य किसी ऐसी बात के लिए ध्यान आकर्षण करना है जिस पर किसी को घमंड हो। भविष्यवक्ताओं ने हमेशा घमंड और संसार की बेकार की वस्तुओं पर जोर डालने के विषय में चेतावनी दी है। सम्मानजनक नागरिक बातचीत में व्यापक गिरावट होना बेचिंता। स्वतंत्रता के अंत नियम में जरूरत है कि हम बहुत से अन्य चुनावों का सम्मान करें जिससे हम सहमत नहीं हैं। टकराव और विवाद अब अक्सर सामान्य शिष्टाचार की सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। हमें अधिक शिष्टता और विनम्रता की आवश्यकता है। अल्मा अपने हृदय के अहंकार में फूलने में ये मानते हुए एक दूसरे से बेहतर हो कि विरुद्ध चेतावनी देता है और विनम्र लोगों को सताते हुए जो पवित्र रीति के अनुरूप चलते हैं। मैं उन लोगों के बीच सच्ची भलाई को पाया है जो विनम्र और परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं। उनमें से बहुत से पुराने नियम के भविष्यवक्ता मीका की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, जिसने घोषणा की थी, प्रभु तुमसे क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। जब हम वास्तव में विनम्र होते हैं, हम क्षमा के लिए प्रार्थना और दूसरों को क्षमा करते हैं, जैसा हम मुसाया में पढ़ते हैं। अल्मा ने सिखाया था, जिनकी जितनी बार हम पश्चाताप करते हैं प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करता, दूसरी ओर जैसा कि प्रभु की प्रार्थना में बताया गया है, जब हम दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं हम स्वयं के लिए दंड लाते हैं। यीशु मसीह के प्रायश्चित के कारण पश्चाताप के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। जब हम उन्हें क्षमा नहीं करते हैं जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किया है, हम उद्धारकर्ता के प्रायश्चित के प्रभाव को अस्वीकार करने की दशा में होते हैं। प्रतिशोध रखने और क्षमा न करने से अपने संबंधों में मसीह समान तरीके से विनम्रता को नकारने से वास्तव में अपने लिए निंदा लाते हैं। प्रतिशोध रखना हमारी आत्माओं को कमजोर करता है। मैं किसी भी प्रकार के अहंकार के प्रति चेतावनी भी दे दूं, प्रभु ने भविष्यवक्ता मरोनी के द्वारा अहंकार और विनम्रता एक दूसरे के एकदम विपरीत बताया है। मूर्ख लोग हंसी उड़ाते हैं परंतु वे विलाप करेंगे और विनम्र लोगों के लिए मेरा अनुग्रह पर्याप्त है। प्रभु आगे घोषणा करते हैं, मैं मनुष्य को दुर्बलता देता हूँ ताकि वो विनम्र सके। मैं उन सारे मनुष्यों के लिए मेरा अनुग्रह प्राप्त है, पर्याप्त है, जो मेरे सामने स्वयं को विनम्र करते हैं, क्योंकि यदि वे स्वयं को मेरे सामने विनम्र करेंगे और मुझ में विश्वास रखेंगे तो मैं दुर्बलताओं को भी मजबूत कर दूंगा। विनम्रता में हमारी अनेक आशीषों और दिव्य सहायता के लिए आभारी होना भी शामिल है। विनम्रता कुछ भव्य उपलब्धियां नहीं और न ही महान चुनौतियों पर विजय प्राप्त करना, ये आत्मिक सामर्थ्य का चिन्ह है। ये शांत विश्वास है कि दिन प्रतिदिन और घंटे प्रति घंटे हम प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं और उसकी सेवा कर सकते हैं और उसके उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरी प्रार्थना है कि इस विवादास्पद संसार में हम प्रतिदिन सच्ची विनम्रता के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। एक पसंदीदा कविता जिसे मैं इस तरह लिखा, महानता की परीक्षा ही मार्ग है, व्यक्ति प्रतिदिन अनंत काल से मिलता है। मैं उद्धारकर्ता और उसके प्रयासचित और प्रत्येक और हर दिन विनम्रता से उसकी सेवा करने के अत्यधिक महत्व का दृढ़ गवाही देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
अब सभा गायक मंडली के साथ मिलकर There is sunshine in my soul today गाएगी। गीत के पश्चात हम 12 प्रेरितों के परिषद के एल्डर रोनल्ड ए राजबैंड को सुनेंगे। उनके पश्चात हम 70 के एल्डर ओ विंसन हैलक को सुनेंगे।
ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 187वां अर्थवार्षिक महासम्मेलन है।
Brothers and sisters,
भाइयों और बहनों, जब मैं प्रेरणादायक विश्वव्यापी महासम्मेलन में खड़ा हूं और आपके समर्थन और आपकी आत्माओं को महसूस करता हूं, तो मैं प्रेरित पौलुस के शब्दों का विचार किए बिना नहीं रह सकता। हमारे यहाँ रहना भला है। यह बिल्कुल भी वैसा नहीं है जो आलमा ने एमोनिया के लोगों को प्रचार करने के बाद कहा था। आलमा ने लोगों की दृष्टता के कारण शहर छोड़ा था। जल्द ही आलमा को स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने कहा, एमोनिया के नगर को वापस चले जाओ और नगर के लोगों में फिर से प्रचार करो। आलमा ने वैसा तुरंत किया, शहर में अन्य मार्ग से प्रवेश किया। जब वह शहर के में दाखिल हुआ तो वह भूखा था और वह एक पुरुष से बोला, क्या तुम परमेश्वर के विनम्र सेवक को कुछ खाने को दोगे? और पुरुष ने उससे कहा, मैं एक निफई हूँ और जानता हूँ कि तुम परमेश्वर के एक पवित्र भविष्यवक्ता हो, क्योंकि तुम ही वह पुरुष हो जिसके विषय में स्वर्गदूत ने एक दिव्य दर्शन में कहा था, तुम एक अतिथि को स्वीकार करना। वह पुरुष अमलुक था। क्या आलमा को अमलुक का मिलना मात्र एक संयोग था? नहीं, यह कोई संयोग नहीं था कि वह उस शहर में उस मार्ग से गया जो उसे इस विश्वासी पुरुष को मिलता और वह उसका प्रचार साथी बनता। एल्डर नील ए मैक्सवेल ने एक बार समझाया, हम में से कोई भी पूरी तरह से उन संभव अवसरों को प्रयोग नहीं कर सकता जो हमें हमारे मित्रों के समूह द्वारा दिए जाते हैं। आप और मैं इन्हें लोगों से मिलने का संयोग कह सकते हैं। इस शब्द का उपयोग नश्वरों के लिए करना समझ में आता है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्यों के लिए संयोग शब्द का उपयोग करना उचित नहीं है। वह संयोग द्वारा कार्य नहीं करता, बल्कि दिव्य योजना द्वारा करता है। मैं महसूस करता हूँ कि हमारा जीवन शतरंज के बोर्ड के समान है और प्रभु हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता है। यदि हम आत्मिक प्रेरणा का जवाब देते हैं, अतीत में देखते हुए हम अपने जीवन में उसके हाथ को देख सकते हैं। हम इसी प्रकार के संयोग को देखते हैं। जब नेफई लबान से पट्टियों को लेने वापस गया था, उसका मार्गदर्शन आत्मा द्वारा हुआ था, पहले से न जानते हुए कि उसे क्या करना चाहिए। लबान शीघ्र ही उसे नशे की हालत में मिला और नेफई ने उसे मार डाला और पट्टियों को वापस ले लिया और अपने भाइयों के पास लौट गया। क्या वह भाग्यशाली था कि लबान उसके सामने था, या क्या यह दिव्य योजना द्वारा था? सुसमाचार और गिरजे के महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी में आगे बढ़ाती है। यह संयोगवश नहीं होती, लेकिन परमेश्वर की योजना द्वारा होती है। वह जिसने इस संसार की सृष्टि की थी, अपने शब्दों से सागरों को शांत कर सकता है और आलमा और एमल्यूक और नफई और लबान दोनों को सही स्थान पर सही समय में होने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। इसी प्रकार ऐसी घटनाएं और मित्रताएं हम में से एक प्रत्येक के जीवन में होती हैं जो पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाती हैं। एल्डर जोसेफ बी वर्थलिन ने इस अवसर पर बोला था जब अध्यक्ष मॉनसन ने कहा था, सब बातों पर एक अगुवाई करने वाला हाथ होता है। अक्सर जब बातें होती हैं तो ये संयोगवश नहीं होती। एक दिन जब हम पीछे मुड़कर अपने जीवन में संयोग लगाने वाली घटनाओं की ओर देखते हैं, तो हमें महसूस करेंगे कि असल में वे संयोग मात्र नहीं थी। बहुत बार हमारे अच्छे कार्य को केवल कुछ लोग जानते हैं, हालांकि वे सब स्वर्ग में लिखे जाते हैं। एक दिन हम धार्मिकता के कार्यों के प्रति अपनी संपूर्ण निष्ठा के लिए गवाह के रूप में खड़े होंगे। कोई परिस्थिति या विपरीत परमेश्वर की उद्धार की योजना को नष्ट नहीं कर सकती। अवश्य ही दिव्य योजना द्वारा सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैं संसार के पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ, यीशु ने सिखाया था। भाइयों और बहनों, इसलिए हमें भी यही करना चाहिए। अपने स्वयं के जीवन की यात्रा के अनुभव द्वारा मैं जानता हूँ कि प्रभु हमें शतरंज के बोर्ड पर अपने कार्य को करने के लिए चलाता है। जो अचानक हुआ कार्य लगता है, असल में वह स्वर्ग में एक प्रेमी पिता की देखरेख में होता है जो प्रत्येक सिर के बालों की संख्या को जानता है। हमारे पिता की इच्छा के बिना एक गोरैया भी भूमि पर नहीं गिर सकती। प्रभु हमारे जीवन के प्रत्येक अंश में है और वे घटनाएं और अवसर हमारे परिवारों और दूसरों के प्रगति करने के लिए तैयार करते हैं जब हम पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने में स्वयं सहायता करते हैं। याद रखें, जैसा प्रभु ने इब्राहिम से कहा था, मैं आरंभ से अंत तक जानता हूं, इसलिए मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर रहेगा। प्रभु ने मुझे धार्मिक माता पिता के साथ एक घर में रखा था। संसार के अनुसार वे साधारण लोग थे। मेरे निष्ठावान पिता एक ट्रक चालक थे। फरिश्ते समान मेरी माँ एक गृहिणी थी। प्रभु ने एक सुंदर पत्नी मोलानी को खोजने में मेरी मदद की। उसने एक व्यवसायिक को प्रेरणा दी जो मुझे रोजगार का मौका देने के लिए प्रिय मित्र बना। प्रभु ने मुझे मिशन क्षेत्र में कार्य करने के लिए नियुक्त किया, युवक और मिशन अध्यक्ष दोनों तरह से। उसने मुझे 70 की परिषद में नियुक्त किया और अब उसने मुझे प्रेरित के रूप में नियुक्त किया है। अतीत में देखते हुए मुझे महसूस होता है मैंने उन गतिविधियों की योजना नहीं बनाई थी, प्रभु ने बनाई थी। ठीक उसी तरह जैसे वह महत्वपूर्ण गतिविधियों को आपके लिए और उनके लिए बनाता है जिनसे आप प्रेम करते हैं। आपको अपने स्वयं के जीवन में क्या खोजना चाहिए? परमेश्वर के चमत्कार क्या हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि वह निकट है, कहते हुए मैं ठीक यहाँ हूँ। उन समय को विचार करें कुछ प्रतिदिन जब प्रभु ने आपको जीवन के कार्य किया था और फिर दोबारा कार्य किया। उन्हें उन क्षणों के रूप में संजोएं जो प्रभु ने आप पर और आपके चुनावों पर विश्वास दिखाया, लेकिन उसे आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए अधिक कार्य करने की अनुमति दे जितनी आप स्वयं कर सकते हैं। उसके हस्तक्षेप को बहुमूल्य समझे। कई बार अपनी योजनाओं का परिवर्तन को हमारी यात्रा में गलत कदमों के रूप में लेते हैं। उन्हें प्रभु की नियुक्ति पर पहले कदम के रूप में लें। कुछ महीने पहले हमारी नाती गिरजे के बाहर से ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा के लिए युवा समूह में शामिल हुई थी। उसकी यात्रा की योजना में लिखा था कि वह उस क्षेत्र में होकर जाएगी जहां उसका प्रचारक भाई हमारे नाती सेवा कर रहा था। हमारा नाती का अपने भाई से मिलने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी बस ने जैसे ही उस शहर के प्रवेश किया जहां उसका भाई सेवा कर रहा था, दो प्रचारकों को सड़क पर जाते हुए देखा गया। उन प्रचारकों में से एक उसका भाई था। बस उम्मीद से भर गई और जब विद्यार्थियों ने बस चालक को बस रोकने के लिए कहा ताकि वह अपने भाई की अभिवादन कर सके, एक मिनट में भी कम समय में आंसुओं और दया के शब्दों के साथ उसका भाई अपने प्रचारक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वापस चला गया। हमें बाद में पता चला उसका भाई उस सड़क पर 5 मिनट से कम समय के लिए था अपनी नियुक्ति से अपने कार की ओर जाते हुए। स्वर्गीय पिता हमें कई परिस्थितियों में विशिष्ट उद्देश्य के लिए रख सकता है। ऐसा उसने मेरे जीवन में किया है और वह ऐसा आपके जीवन में भी कर सकता है जैसे उसने हमारे नाती नातिन के जीवन में किया था। हम में से हर एक कीमती है और प्रभु द्वारा प्रेम किया जाता है जो ख्याल रखता, प्रेरणा देता और जो हम में से प्रत्येक की अनोखी तरीके से रखवाली करता है। वह नश्वर मनुष्यों में से बहुत ज्यादा बुद्धिमान और अधिक बलशाली है। वह हमारी चुनौतियां, हमारी जीतों और हमारे हृदय की धार्मिक इच्छाओं को जानता है। लगभग एक वर्ष पहले जब मैं टेम्पल स्वायर से गुजर रहा था, एक प्रचारक बहन मेरे पास आई और पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं फ्लोरिडा से हूँ। उसने मुझे अपना नाम बहन एडा चिलन बताया। हाँ, मुझे उससे और उसके परिवार से मिलना अच्छी तरह याद था। उसके स्टेक अध्यक्ष ने हमें चिलन परिवार से भेंट करने के लिए कहा था। यह स्पष्ट था कि हम वहाँ उनकी बेटी एडिया के लिए गए थे जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ था। हमारी मुलाकात के बाद और एक वर्ष के अधिक सिखाने के संगीत करने के बाद एडा का बपतिस्म हुआ। टेम्पल स्वायर में हमारी भेंट के बाद एडा ने मुझे एक पवित्र पत्र लिखा। उसने लिखा, मैं अपने संपूर्ण हृदय से जानती हूँ कि स्वर्गीय पिता हम में से प्रत्येक को जानता है और कि वह हमें एक दूसरे के मार्ग में किसी कारण से लाता है। मेरे प्रचारों में से एक होने के लिए धन्यवाद। मुझ तक पहुंचने के लिए 5 वर्ष पहले मुझे खोजने के लिए एडा ने मुझे अपने परिवर्तन की कहानी भी भेजी थी, जिसमें उसने उस दिव्य संयोगों के बताया था जो उसके जीवन में हुए थे, जो उसके बपतिस्मे और पुष्टिकरण टेम्पल स्वयर में मिशन में सेवा और हाल में उसे मंदिर विवाह में मार्ग पर ले गए थे। क्या आप यह संयोग मात्र था कि स्टेक अध्यक्ष ने हमें चिलन के घर भेजा था, या फिर वह बाद में टेम्पल स्वयर में मिले? एडा की गवाही देती है कि यह सब कुछ परमेश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा था। प्रभु हमारे साथ होना चाहता है। यह कोई संयोग नहीं कि जब आप उसकी आत्मा को महसूस कर रहे होते हो और पहली प्रेरणा पर कार्य करते हो, जो आपको लगता है उसने वादा किया, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे दाहिने और तुम्हारे बाईं ओर रहूंगा, और मेरी आत्मा तुम्हारे हृदय में रहेगी और मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे समर्थन के लिए तुम्हारे आसपास रहेंगे। हम सबों के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो जानना पहचाना लगता है, जानना पहचान की को नवीन कर सकते हैं, या अजनबी से मिल सकते हैं जिसके विचार समान हो। जब ऐसा होता है तो शायद प्रभु हमें याद दिलाता है कि हम सब भाई बहन हैं। हम वास्तव में एक ही कार्य करने लगे हैं जो जोसेफ स्मिथ ने मसीहा का कार्य कहा था। दिव्य योजना में हमारी स्वतंत्रता कहाँ फिट होती है? हमारे पास हमारे उद्धारकर्ता का और उसके चुने हुए मार्गदर्शनों का अनुसरण करना या ना करना इच्छा होती है। यह नमूना मॉर्मन की पुस्तक में स्पष्ट है। जब निफाए प्रभु से दूर हो गए थे, हिलामन दुखी था और उन्होंने देखा कि अब प्रभु की आत्मा उनकी रक्षा नहीं कर रही थी। हाँ, वह उनसे अलग हो चुकी थी क्योंकि प्रभु की आत्मा अब पवित्र मंदिरों में निवास नहीं करती है। इसलिए अपने चमत्कार और अद्वितीय शक्ति के द्वारा प्रभु ने उनकी रक्षा करनी बंद कर दी, क्योंकि वे अविश्वास और भयाव दुष्टता के स्थिति में चले गए थे। वह सब जो प्रभु हमसे कहता है, इसका परिणाम नहीं होते कि हम कितना मजबूत हैं, हम कितने विश्वासी हैं, या हम क्या जानते हैं। शाऊल का विचार करें, जिसे प्रभु ने दमिश्क के मार्ग पर रोका था। वह अपने जीवन में गलत दिशा पर जा रहा था। इसका अर्थ उत्तर या दक्षिण से बिल्कुल नहीं। शाऊल को दिव्य रूप से सही किया गया था। बाद में वह पौलुस के रूप में जाना गया। उसकी प्रेरित सेवकाई में वही दिखाई दिया जो प्रभु उसकी क्षमता के बारे में पहले से जानता था, ना कि वह जो शाऊल के रूप में वह करता। इसी तरह प्रभु हम में से प्रत्येक को जानता है कि हम क्या कर सकते हैं और बन सकते हैं। प्रेरित पौलुस ने क्या सिखाया था, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम कर रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की भलाई को उन्नति करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो अच्छा और अनुसार बुलाए हुए हैं। जब हम धार्मिक चाहने वाले और योग्य होते हैं, जब हम योग्य और निपुण होने का प्रयास करते हैं, तो हम उन स्थानों पर प्रगति करते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, और स्वर्गीय पिता की दिव्य योजना हिस्सा बन जाते हैं। जब सबों के भीतर सभी दिव्यता है, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे साथ कार्य कर रहा है, तो हम उत्साहित हो सकते हैं, यहाँ तक कि आभारी भी मार्गदर्शित के लिए। जब स्वर्ग में हमारे पिता कहता है, यह मेरा कार्य और मेरी महिमा है, मनुष्य के आत्मा और अनंत जीवन को कार्यान्वित करता है, तो यह सब बच्चों के विषय में बात करता है, विशेष आपके लिए। प्रभु का हाथ आपका मार्गदर्शक है। दिव्य योजना के द्वारा वह आपके जीवन में छोटी बातों के साथ साथ बड़ी बातों को भी जानता है। जैसे नवीन वचन कहता है, प्रभु मैं आपके संपूर्ण हृदय का भरोसा रखना, और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं गवाही देता हूँ कि आपको आशीष देगा, आपका सहारा देगा और आपको शांति देगा। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।
I have had the great मुझे अपने अधिकांश वर्ष के जीवन में प्रशांत महासागरीय संतों के बीच सेवा करने की महान आशीष मिली थी। इस समर्थित संतों के विश्वास, प्रेम और अद्भुत बलिदान मुझे प्रेरणा, आभार और आनंद से भर देता है। उनकी कहानियां आपके समान हैं। मैंने विचार किया कि इन संतों में बहुत कुछ ऐसा था जो उस विधवा में था जिस पर उत्तरगति ध्यान दिया गया। वह बैठकर देख रहा था लोग मंदिर के भंडार किस प्रकार पैसे डालते हैं और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला और इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़िया डाली और उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से एक कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला था, परंतु इसने अपनी घटी में से कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। यद्यपि उसकी दमनिया बहुत छोटा योगदान थी लेकिन उद्धारकर्ता के लिए उसका उपहार अत्यधिक मूल्य की थी क्योंकि उसने सब कुछ दिया था। उस क्षण उद्धारकर्ता उस विधवा को पूर्ण रूप से जानता था क्योंकि उसके उपहार ने उसे उसकी भावनाओं को प्रकट किया था। उसके प्रेम और विश्वास की गुणवत्ता और गहराई ऐसी थी कि उसने यह जाने हुए दिया था जरूरत पूरी की जाएगी। मैंने इसी प्रकार की भावना प्रशांत महासागरीय संतों में देखी। हाल में ही में द्वीपों में एक पर एक छोटे से गांव है। एक वृद्ध और उसकी पत्नी ने निष्ठा से प्रभु से पूछने के प्रचारकों के निमंत्रण को स्वीकार किया था कि क्या जो पाठ उन्हें सिखाए जा रहे थे वे सच्चे थे। इस प्रक्रिया में उन्होंने प्रतिबद्धताओं के परिणाम पर विचार किया था कि उन्हें पूरा करना होगा। यद्यपि उन्हें उत्तर पुनर्स्थापित सुसमाचार को स्वीकार करने के लिए मिलता है, उन्होंने गिरजे की सच्चाई और मॉर्मन की पुस्तक की सत्यता को जानने के लिए उपवास रखा और प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मधुर लेकिन स्पष्ट सकारात्मक रूप से था, हाँ यह सत्य है। यह गवाही प्राप्त करने के लिए उन्होंने बपतिस्मा लेना चुना। यह चुनाव उनके व्यक्तिगत जीवनों में से नकारात्मक परिणामों के बिना नहीं था। अपने निर्णय और बपतिस्मा को उन्होंने बड़ा मूल्य चुकाया था। उनका रोजगार चला गया, उन्हें अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का बलिदान करना पड़ा, महत्वपूर्ण मित्रता समाप्त हो गई, परिवार में का समर्थन, प्रेम और आदर चला गया। वह अब प्रत्येक रविवार गिरजे जाते हैं, मित्रों और पड़ोसियों के साथ अजीब सी सरसरी नजर डालते हुए परिदृशा में जाते हुए मिलते हैं। इन कठिन परिस्थितियों में इस भले भाई पूछ गया कि उसने गिरजे में जुड़ने के लिए निर्णय के बारे में ऐसा क्या महसूस किया था। उसका जवाब सरल और मजबूत था, यह सत्य है क्या नहीं, हमारा चुनाव स्पष्ट था। इन दो नए परिवर्तित संतों के पास वास्तव में विधवा के समान हृदय था। उन्होंने विधवा की तरह सब कुछ दे दिया जो वे अपने थोड़े में से दे सकते थे। उनके विश्वासी हृदय और अटल विश्वास के परिणाम स्वरूप उस कठिन समय के दौरान उसने बोझ हल्के हो गए थे। गिरजे के सहायक और सेवा करने वाले सदस्यों से उन्हें एकजुट होकर सहायता मिली और वे गिरजा के अपनी नियुक्तियों में सेवा करके व्यक्तिगत रूप से मजबूत हुए थे। अपना सब कुछ देने के बाद उनके लिए महात्मा खुशी का दिन तब आया जब वह मंदिर में एक अनंत परिवार के रूप में मुहरबंद हुए। अल्मा के मार्गदर्शन में परिवर्तित हुए लोगों के समान प्रभु ने उन्हें शक्ति दी है वह अपने बोझों को सरलता के साथ उठा सकें और वे आनंदपुर और धैर्य के साथ प्रभु की सभी इच्छाओं का अधीन हो सकें। इस प्रकार विधवा का हृदय इन शानदार दंपति में दिखाई दिया था। मैं आपसे एक अन्य अनुभव के विशेष में बोलता हूँ कि विधवा का हृदय स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया था। समाओं में अपने प्रचारकों को सुसमाचार प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने के लिए ग्राम परिषदों के साथ कार्य किया था। कुछ वर्ष पहले मैंने एक ग्राम के प्रधान से बात की थी जहाँ हमारे प्रचारकों का जाना कई वर्षों में से मना था। मेरी बातचीत को अधिक समय नहीं हुआ, सर्वोच्च प्रधान के ग्राम को गिरजे के लिए खोल दिया गया था। हमारे प्रचारकों को उन लोगों के सुसमाचार और उनसे सिद्धांत सीखने की अनुमति दे दी जो इसे सीखना चाहते थे। इस चमत्कारी बदलाव के कई वर्षों के बाद मैं जानने का इच्छुक था कि उस सर्वोच्च प्रधान के साथ क्या हुआ था जिसने यह निर्णय लिया था। मैंने इसके बारे में पूछा और प्रधान जिसमें से बात कर रहा था जवाब दिया। व्यक्ति कुछ समय के लिए अंधकार में रह सकता था लेकिन एक समय आता है जब वह प्रकाश में आना चाहेगा। सर्वोच्च प्रधान ने गांव को खोलने में विधवा के हृदय का प्रदर्शन किया था, एक ऐसा हृदय जो कोमल हो जाता है जब सच्चाई की गर्माहट और प्रकाश प्रकट किया जाता है। यह मुखिया वर्षों की परंपराओं को तोड़ने, अधिक विरोध सहने और दृढ़ रहने को तैयार था ताकि दूसरे आशीषित किए जा सकें। यह वह मुखिया था जिसका हृदय परंपराओं, संस्कृति और व्यक्तिगत शक्ति के बजाय अपने लोगों के कल्याण और खुशी पर केंद्रित था। इन बातों के होते हुए भी उसने ऐसा किया क्योंकि अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने हमें सिखाया है कि जब हम उद्धारकर्ता के उदाहरण का अनुसरण करते हैं तो हम दूसरों के जीवन में प्रकाश होने का मौका होगे। अंत में प्रशांत महासागरी संतों के बीच के एक अनुभव को आपके साथ बांटूंगा जो मेरी आत्मा से गहराई से और आत्मिक रूप से समाया हुआ है। कुछ वर्ष पहले मैं अमेरिकन समाओं में एक नए वार्ड के धर्माक्ष का युवा सलाहकार था। हमारे पास 99 सदस्यों थे जिनमें निर्वाह खेती करने वाले किसान, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ फैक्ट्री के कारगर, सरकारी नौकर और उनके परिवार शामिल थे। जब प्रथम अध्यक्षता के 1977 में घोषणा की गई थी तो समाओं में मंदिर बनाया जाएगा तो हम सबों के द्वारा आनंद मनाया और धन्यवाद व्यक्त किया गया था। उस समय अमेरिकन समाओं से मंदिर जाने के लिए यह तो हवाई से या फिर न्यूजीलैंड से होकर यात्रा करनी पड़ती थी। यह यात्रा बहुत खर्चीली होती थी जो कि बहुत से विश्वासी गिरजे के सदस्यों की पहुंच से बाहर था। इस समय के दौरान सदस्यों को मंदिर निर्माण में सहायता के लिए भवन कोष में दान देने के लिए गया था। वह क्या दे सकते थे? अपने दान एक चित्र देने के लिए परिवारों को एक निश्चित तारीख दी गई थी। बाद में जब इन दोनों को गुप्त में खोला गया तो हमारे धर्माक्ष यथा शानदार सदस्यों के विश्वास और उदारता में विनम्र और भावुक हो गई थी। प्रत्येक परिवार और उनकी परिस्थितियों के जानते हुए मैंने आश्चर्य समान और विनम्रता की मजबूत और चिर स्थायी भावना को महसूस किया था। यह हर तरह से वर्तमान समय की विधवा की दमड़िया थी जो उन्होंने अपने थोड़े में से खुशी से सब कुछ दे दिया था। समाओं में वादा किए गए एक प्रभु के पवित्र मंदिर का निर्माण करने के लिए इन परिवारों ने जो कुछ उसके पास था उसे प्रभु को समर्पित कर दिया था, इस विश्वास के साथ कि उन्हें आशीषों की कमी नहीं रहेगी। उनके उपहार को उनके विधवा के हृदय को व्यक्त किया था। उन सबों ने यह इच्छा और खुशी से दिया था क्योंकि उनके भीतर विधवा का हृदय विश्वास की आंख से उनके परिवार समाओं के अमेरिकन समाओं के लोगों को आने वाली पीढ़ियों के उपलब्ध श्रेष्ठतम आशीषों को देख सकता था। मैं जानता हूं कि उनकी समर्पित भेंटे उनकी विधवा की दमड़िया प्रभु द्वारा पहचानी और स्वीकार की गई। विधवा का हृदय जिस अपनी दो दमड़िया दी थी एक ऐसा हृदय है जो बलिदान के कारण सब कुछ दे देगा। कठिनाइयां, अत्याचार और परित्याग सहते हुए और कई प्रकार के बोझों को उड़ाते हुए विधवा का हृदय एक ऐसा हृदय है जो सच्चाई के प्रकाश को समझता, महसूस करता और जानता है और उस सच्चाई को अपनाने के लिए कुछ भी दे देगा। यह दूसरों को यही प्रकाश देखने में मदद भी करता है और वही अनंत खुशी और आनंद महसूस करता है। अंत में विधवा के हृदय को इच्छा से पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने के लिए सब कुछ देने के द्वारा परिभाषित किया जाता है। आओ हम उस कार्य को करने में विश्वव्यापी संतों के रूप में जुड़े तो विधवा का हृदय पाने के लिए आवश्यक है उन आशीषकाओं या वास्तविक आनंद लेते हुए जो मांग को पूरा करेगी। हम में से प्रत्येक के लिए मेरी इच्छा हमारे बोझों को सहने, आवश्यक बलिदान करने का हृदय और देने और करने की इच्छा होने के की याचना है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रभु आपके लिए कभी नहीं करेगा। विधवा का हृदय धन्यवाद से भरा रहता है। उद्धारकर्ता दुखी पुरुष और रोगी को पहचानता है ताकि हम कड़वे प्याले से पीना पड़े। हमारी कमजोरियां और असफलताओं के होते भी वह उनके कारण वह अपने हाथों को आगे बढ़ाता है जो कि हमारे कारण छेदे गए थे। वह हमें ऊपर उठाएगा यदि हम उसके सुसमाचार के प्रकाश में आना, उसे गले लगाना चाहते हैं और उसे अपनी जरूरतों को पूरा की अनुमति देते हैं। मैं महान प्रेम की अपनी गवाही देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के अनुयायी के समान बांट सकते हैं। मैं अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन से प्रेम और पृथ्वी का परमेश्वर के भविष्य वक्ताओं के रूप में उनका समर्थन करता हूं। मॉर्मन की पुस्तक संसार के लिए यीशु मसीह का अन्य गवाह है और मैं सबों को उसका अध्ययन करने और आपके लिए इसके संदेश की खोज करने का निमंत्रण देता हूँ। वे सब उसे निकट आने के प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, शांति, प्रेम और ज्योति प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह हमारा महान उद्धार करता है, मुक्तिदाता यह केवल यीशु मसीह और उसके असीमित प्रायश्चित और चमत्कार में अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इसकी गवाही में उसके अर्थात यीशु मसीह के पवित्र नाम में देता हूं, आमीन।
We're indeed grateful for all who have spoken to us.